کے قابل بھی کرے. اجازت دیجیے مجھے اس وقت اور ماجی جمال صاحب کو, مگر نیوز میں ہمارے ساتھ رہیے گا. پلیز اسٹے ٹیونڈ.
اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی جو ہے آج کی کہانیاں آج پھر ہمارے پاس بہت ساری ہیں. ہماری ڈیفنس منسٹر جو ہیں انیتا آنند صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا سارا جو اکوپمنٹ ہے ملٹری کا, یہ جو مر رہا ہے, اس کے اوپر اب کینیڈا انویسٹ کرے گا $4.9 billion ان 6 months. یہ سارا ماڈرنائز کرنے کے لیے ڈیفینسو سسٹم, اور 40 billion جو ہے اس کی ہم تقریباً فنڈنگ جو ہے وہ سپینڈ کریں گے ان دا نیکسٹ 20 years, تاکہ یہ جو یو ایس کینیڈین ارلی وارننگ سسٹمز جو کہ NORAD ہے, جس کو کہتے ہیں NORAD, اس کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے. ان کو بڑے عرصے سے جو کینیڈین ملٹری کے ایکسپرٹس اور دوسرے یو ایس ایکسپرٹس بھی تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ آپ کی جو ہے یہ ڈائنگ اور بالکل ایجنگ اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ NORAD جو ہے اس کو آپ نے کیا تھا 1950s میں, تو تب وہ ایسے چلتا ہی آ رہا تھا.
آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے,
ہاں, میری ٹائم تھریڈس اینڈ آل دوز, ان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے
دیکھتے ہوئے, کیونکہ دنیا کس طرف جا رہی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے.
یس, تو وہ کہہ رہے ہیں جی
اس کی ضرورت ہے,
ضرورت ہے, تو یہ ہم کریں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جوائنٹ یو ایس کے ساتھ یہ جو ہے سارا مل کے ہم کر رہے ہیں NORAD کے اندر, لیکن اب یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو یو ایس والے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسلز جو ہے اس کے اندر بھی جو اپنی وہ فنڈنگ وغیرہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ اوٹوا جو تھا, ہم جو تھے, کینیڈا جو تھا, نکل آیا تھا اس میں سے یہ 2005 میں ہی.
Exactly.
تو کیا اب اس کے اندر بھی آپ یو ایس کے ساتھ انٹر کریں گے کہ نہیں, یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ڈیٹیلز جو ہیں باقی کی آئی ہیں. یو ایس ٹریجری سیکرٹری جو ہیں جینٹ یلن, وہ اب آ رہی ہیں ٹورنٹو میں, اور یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئے گی ہماری ڈیپٹی پرائم منسٹر اور منسٹر آف فائنانس کرسٹیا فری لینڈ کے ساتھ, اور ان کے اوپر یہ بات کریں گے. ظاہر ہے رائزنگ فوڈ پرائسز اینڈ فیول پرائسز, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فورم ہو رہا ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر, اس کے اندر بھی یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گی. اور یہ ظاہر ہے کہ اب چائنا کے ساتھ بھی لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی, تو سپلائی چین کے بہت سارے مسئلے ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے بھی انفلیشن جو ہے چیزوں کی بہت اوپر چلی گئی ہے, تو اب یہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئے گی. اور یہ جو رشیا کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپس میں اس طرح سے یہ لوگ بات کریں گے. فیڈرل جو آج گورنمنٹ ہے کینیڈا کی, اس نے آج اناؤنس کیا ہے کہ ہم کمپلیٹلی یہ جو پلاسٹک شاپ بیگ, جن کو کہ ہم اپنی زبان میں شاپر کہتے ہیں, شاپر, یہ شاپر جو ہے نا, یہ بالکل بین ہونے لگے ہیں جی یہاں پہ. وہ کہتے ہیں جی نہ تو یہ بنائے جائیں گے پلاسٹک کے شاپر, اور نہ ہی ان کو امپورٹ کیا جائے گا, تو 2025 تک بالکل اس کو ختم کر دیا جائے گا, اور سیلنگ جو ہے وہ تو نیکسٹ ایئر کے اینڈ تک جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. اس کی جو انفارمیشن ہے وہ انوائرمنٹ منسٹر سٹیون گلبورٹ نے آج دی ہے, ایک پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے سینٹ لارنس ریور بیچ کیوبیک کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے 2030 تک کمپلیٹلی سارا پلاسٹک ویسٹ جو ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ جا کے پھنس جاتا ہے ہمارے بیچز میں, ریورز میں, ویٹ لینڈز میں, فارسٹ میں, تو ان سب کو ہم
پیچھے ہیں اس میں, بہت پیچھے ہیں ہم, بہت پیچھے ہیں, کیونکہ انڈیا جیسا ملک اس نے کئی سال پہلے ان چیزوں کو بین کر دیا.
احمد بھائی یہ اچھا, یہ آپ ڈیٹیل دیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. 15.5 billion جو ہے پلاسٹک گروسری بیگز جو ہیں, یہ فیڈرل ڈیٹا جو آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم یوز کرتے ہیں 4.5 billion پیسز آف پلاسٹک کٹلری ہم یوز کرتے ہیں, 3 billion اسٹک جو ہیں, یہ جو اسٹر اسٹکس یہ جو ملتی ہیں یہ ٹم ہارٹنز وغیرہ میں ہلانے کے لیے, وہ 5.8 billion اسٹراز, 183 million وہ جو سکس وہ جو ہوتا ہے پیک کا وہ جو رنگز جو ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں, 8.5 million ٹیک آؤٹ کنٹینرز ہم جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں, یہ سیل کیے جاتے ہیں کینیڈا کے اندر. آپ کو یاد ہے ماجد بھائی جو ہمارے نانا جی یا دادا جی وغیرہ کا زمانہ ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے ایک ورڈ وہ لوگ بولتے تھے کہ کوئی لینے کے لیے جا رہا ہوتا تھا نا ملازم کوئی سبزی یا کچھ, تو اس کو کہتے تھے یار چولا لے کے جائیں. چولا جو ہوتا تھا وہ کپڑے کا بیگ ہوتا تھا.
Exactly.
तो वो अपनी साइकिल पे निकलता होता था जो मुलाजिम घर का होता था, तो उसको कहते थे आज तू वड्डा झोला लेके जाना है, यानी कि आज बहुत सारी सब्जियां चीजें चाहिए, तो वो बड़ा वाला जो कपड़े का बैग था वो लेके जाता था, या उसको कहते थे आज छोटा ही झोला ले जाए, तो वो छोटा वाला लेके जाता था जिसमें कोई ब्रेड या दूध या अंडे कुछ ऐसे लाने होते थे। तो शुरू से तो ये कपड़े के ही वो यूज करते थे, अचानक फिर ये बीच में जी ये नया फैशन आ गया कि जी ये प्लास्टिक का हमने यूज करना है, क्योंकि प्लास्टिक ये जो होता है ये क्या होता है,
डिस्पोजेबल था।
हाँ हाँ, वो कपड़ा डिस्पोजेबल था। ये अब क्या था, ये जो प्लास्टिक के बैग आ गए ना, ये ना तो मेल्ट होते हैं ना कुछ होते हैं, ये जाके क्लॉग कर देते हैं, फिर वो जो ओशंस हैं उनके अंदर मरीन लाइफ को डैमेज करते हैं,
स्पेशली ओशन। हाँ, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है
जी,
कि वो समझते हैं हमने सिर्फ गार्बेज में फेंक दिया ये, मगर जो ओशन की जो बॉटम है
हाँ, हाँ,
उसको जो हर्ट कर रहे हैं ना,
कर रहे हैं
तो वो ये
मच्छियां मर रही है ना इसको खा खा के मजद भाई, और इस तरह करके तो ये, और फिर वो जो सारे वो जो स्पिल हुई स्विच जो बाहर आई हुई है उसके अंदर ये प्लास्टिक जा जाके फंसा होता है, तो ये तो इसलिए ये दिस इज वेरी डेडली। इसके होते हुए जी आज जैसे ये ऐलान आया फेडरल गवर्नमेंट का, साथ ही लॉबलॉज कंपनीज लिमिटेड जो है, जिसकी के पेरेंट कंपनीज है लॉबलॉज और शॉपर्स ड्रग मार्ट, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही सारे अपने स्टोर्स के ऊपर प्लास्टिक बैग्स जो है शॉपिंग के वो हम हटा देंगे। इसके अलावा ये कहते हैं जी कि जो हमारी फार्मेसीज हैं, पीसी एक्सप्रेस सर्विस है और 2500 तकरीबन इनके स्टोर्स जो हैं, उस सब के ऊपर वो कहते हैं ये तमाम हम हटा देंगे, लेकिन हम एक रीयूजेबल वैरायटी जरूर रखेंगे। तो वो कपड़े की भी हो सकती है, वो दूसरा भी कोई मटेरियल हो सकता है, तो वो हाँ कॉटन होएगा, तो वो हम कर सकते हैं रीयूजेबल बैग्स रख देंगे। और वो कहते हैं बहुत सारे वैसे तो हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी वो रीयूजेबल बैग्स जो है यूज कर ही रहे हैं, तो हमने ये बिल्कुल ही एलिमिनेट ये कर देना, विच इज वेरी गुड। अच्छा जनाब, लिबरल पार्टी जो है, अब आपको पता ही है कि सेशन जो है खत्म होने लगा है क्योंकि छुट्टियों पे अब जाएंगे एमपीज जो हैं वो भी, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो उनके गवर्नमेंट के हाउस लीडर हैं मार्क हॉलैंड, वो कह रहे हैं जी मैं ऑलरेडी लोगों के साथ जो है ऑपोजिशन के साथ मैंने बातचीत शुरू कर दी है, और बातचीत किस सिलसिले में करेंगे मार्क हॉलैंड साहब, वो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक की जो हालांकि कंडीशन जो है पेंडेमिक की अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि हाइब्रिड सिस्टम अभी भी रखा जाए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये मैं एक जो है हम वर्चुअल कमेटीज लाना चाहते हैं, और कमेटी के आगे ये मैं फिर से ये दरखास्त रखना चाहता हूं कि 2023 तक जो है हम वर्चुअल मीटिंग्स करें। वो कहते हैं मैं ऑपोजिशन लीडर्स के साथ जो है हाउस के अंदर बात कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि ये जो करंट मोशन है ये थर्सडे जो कि इनका लास्ट सिटिंग डे है जबकि हाउस को एडजर्न किया जाएगा फॉर समर, उसके अंदर ये बात जो है ये मान ली जाए कि हाइब्रिड सिस्टम से हम चलना चाहते हैं, तो उस पे ये चलेंगे। इसके अलावा जनाब, फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है एक क्लास एक्शन लॉसूट लेकर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो इंडिजिनस बच्चों को उनके पेरेंट्स से ले लिया जाता था उनको जो है ये अगेंस्ट है चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। फेडरल कोर्ट जस्टिस माइकल फेलन जो है उन्होंने ये रूल किया है, और उन्होंने कहा था कि ये पीरियड जो वो कवर कर रहे हैं जिसका कि जिक्र फिर जो इन्होंने इंडिजिनस लीडर्स ने भी बड़ी दफा किया था, उन्होंने कहा कि वी आर कवरिंग पीरियड January 1, 1992 टू December 31, 2019, जिसमें कि वैनकूवर लॉ फर्म जो थी जो कि इनको ये जो प्लेंटिव्स थे इनको रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने कहा था कि ये जो बच्चों को रिजर्व से उठा लिया गया था और उनकी फैमिलीज के साथ नहीं रहने दिया गया था, तो इसने उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया था, बहुत सारे आपको पता है बच्चों की डेथ हो गई थी, तो इसलिए आज कोर्ट ने कहा है कि इसने डेफिनेटली चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स जो है उसको अब्यूज किया है, सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस दिखाई है इसके अंदर, और ये सारा कुछ ये जो क्लेम्स आज किए गए हैं ये वैसे अभी तक कोर्ट के अंदर प्रूव तो नहीं हुए हैं क्योंकि अभी ये चल रहा है केस, लेकिन फिर भी जो है ये आज उन्होंने जस्टिस माइकल फेलन ने ये दी है रूलिंग इसके ऊपर, क्लास पीरियड रूलिंग। तो अब देखेंगे इसको आगे चल के जो है, क्योंकि ट्रूडो गवर्नमेंट जो है अब काफी उसने वादे किए थे कि हम ये जो मर्डर्ड और मिसिंग जो विमेन एंड गर्ल्स हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे और इन सब चीजों को करेक्ट करेंगे, और उन्होंने माफी मांगी थी। कनाडा की जो नेशनल रेलवेज कंपनी है जी वो कह रही है कि यूनियन की जो डिमांड्स हैं उनको हम मानने के लिए तैयार हैं, उसकी वजह यह है कि फिर से ये स्ट्राइक जो है वो शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी कि ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिक वर्कर्स जो हैं वो अब सैटरडे को कह रहे थे कि सैटरडे के बाद से ये वापस नहीं गए हैं, तो सीएन एम्प्लॉयज जो थे जिनको कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो सीएन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉब रायली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकातें हुई हैं और हमने इनके साथ हम मिलके बैठे हैं और दो दिन से कॉन्स्टेंटली ये बातचीत चल रही है, लेकिन यूनियन निगोशिएटर स्टीव मार्टिन जो हैं वो कह रहे हैं कि टेक्निकली ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि इनको जैसे कि इंप्रूव्ड कंडीशंस और कॉम्पेंसेशन उनके ऊपर बात करना है, लेकिन यूनियन को ये एनकरेज किया है कि जी आप अपनी जो ये है काम करते रहे और आपके बीच में हमारी डील बन जाएगी, हम ये कर देंगे, आपकी बातें सारी मान लेंगे, तो आप काम को ना रोकें। लेकिन ऑलरेडी जो है वो कह रहे हैं जी पिछले तीन साल के अंदर अब आने वाले जो है उसमें 10% एटलीस्ट हमारी वेज बढ़ाई जाए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं और हमें जो है वो जाहिर है कि परमानेंट फीचर हमारी जॉब्स
का है,
दे डिजर्व इट। हाँ जी, तो अब ये बातचीत चल रही है, तो अब देखेंगे इसके अंदर अभी क्या होता है।
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522-302-2522। खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 2997466।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो दूसरे गदा गाड़ी खरीदते, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे, परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
तीन बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको वापस बुलाया, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बच्चे की एंट्रैपमेंट हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, सफोकेशन के हैजर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं, और इसके अलावा कुछ बेबी फूड फार्मूलाज जो हैं वो भी इन्होंने जो हैं वो वापस बुलाए हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी जो है वो डेंजरस, और जो चीजें बुलाई हैं वो तो को पॉप एंड गो, प्ले पैन, वंडर एंड वाइज बेबी एक्टिविटी, पुश वॉकर और बगाबू, स्टारबस, प्ले यार्ड्स, बिस्नेट और सिमिलैक के कुछ जो फॉर्मूले हैं वो इन्होंने वापस बुलाए हैं, जो कि वो हैजर्डस हो सकते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके से। तो ये है। अच्छा जी, टोरंटो पुलिस ने, जो आपको पता ही है कि एक बस के, टीटीसी की एक बस में एक औरत जो है उसके ऊपर एक लिक्विड डाल के औरत को जो जला दिया गया था, जो कि सिर्फ 20s में थी वो औरत, और उसको 22nd और 3rd डिग्री बर्न्स आए हैं, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन टोरंटो पुलिस की चल रही थी उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि ये जो किपलिंग स्टेशन पे वाकया हुआ है, जिसमें कि उस आदमी ने एक फ्लेमेबल लिक्विड डाला उस लड़की के ऊपर, जिसको कि फिर रश किया गया था हॉस्पिटल में, बट हर कंडीशन रिमेन्स, आई मीन ऑफ कोर्स वेरी वेरी क्रिटिकल। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल हेट क्राइम हो सकता है,
नॉट पॉसिबल, इट इज अ हेट क्राइम,
सस्पेक्टेड, उसने कहा पुलिस ने, सस्पेक्टेड हेट क्राइम ये हो सकता है। तो बहरहाल अब उसको, वो कहते हैं जी कि ये और भी फोर चार्जेज हैं, अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट विद वेपन के भी इसके ऊपर चार्जेज आदमी पे लगाए गए हैं। तो मतलब काफी जो है ये भाई अफसोस की बात है, ये हेट क्राइम्स तो अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं किसी ना किसी के खिलाफ। अच्छा जी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की जो किश्ती है वो डोल गई है। अभी आपको पता है एक साल ही हुए हैं उनको आए हुए, और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कोलिशन एक जो पार्टीज थी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में पीडीएम, पेट्रोल डीजल महंगा पार्टी जो थी उसने, इसी तरह इनकी भी कोलिशन पार्टी थी, और ये लोग आए थे क्योंकि ये बेंजामिन नेतन्याहू को हटाना चाहते थे बेसिकली, और इन्होंने कहा था कि हम जो है यानी कि रल मिलके हम भी इधर करेंगे। आपको पता ही है कि इन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पे 8 पार्टियां मिलके ये बनाएंगे ताकि बेंजामिन नतन्याहू को हटाया जाए, लेकिन अब लग यही रहा है कि ये वापस आ सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी फिर भी शायद जो है वो अगर मेजॉरिटी ले लेती है पार्लियामेंट में, सर्वाइव कर जाती है तो ये लेंगे, लेकिन फिर भी ये वीक हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि बेंजामिन नतन्याहू जो है वो काफी पावरफुल है वहां पे। लेकिन अब हुआ क्या है कि इनके जो बड़े क्लोज एल आए हैं, येर लेपिड जो कि दूसरी पार्टी को कोलिशन पार्टनर है इनके जो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि जी हम पार्लियामेंट को फिर डिसॉल्व कर देते हैं आने वाले दिनों में।
नहीं, मगर वो जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना
जी, लेकिन अब वो डिसॉल्व करने लगे हैं। एंड मीन टाइम जब ये पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी तो जो लिपिड साहब है, ये लिपिड साहब जो है ये एस के टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर्व करेंगे।
सही।
तो उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। आज लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर है नजीब मिकाती, उन्होंने कहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये जो बेतहाशा सीरियन रेफ्यूजीज जो हैं हमारे इधर बैठे हुए हैं, इनके लिए आपको एड भेजनी पड़ेगी, अगर आपने एड ना भेजी तो हमें इनको निकालना पड़ेगा। अच्छा, मिडल ईस्ट के अंदर जो है इन्होंने कहा है कि तकरीबन जो हमारे टोटल आपको पता ही है कि 6 मिलियन रेजिडेंट्स हैं यहां पे लेबनान में, तो वो कहते हैं जी कि इसमें से जो क्वार्टर ऑफ 6 मिलियन है वो सीरियन है, और हमारी अपनी खुद की कंडीशन इतनी पतली है इकोनॉमिक कंडीशन कि हम अब इनके लिए केटर नहीं कर सकते। लेबनान क्राइसिस रिस्पांस प्लान जो है इनका, ये दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन,
जो इकोनॉमी इतनी खराब है
जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे अपने खुद के जो हैं वो इतने ज्यादा डेफिसिट्स बढ़ गए हैं और इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं चल रही, तो हम इनको केटर अब नहीं कर सकते, और इसके बारे में अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई हेल्प ना दी तो हम इनको बोलेंगे कि आप निकल जाओ।
उनके उनका नजर और उनका इशारा ये था कि भाई यूक्रेन में जितना भी हो रहा है दुनिया भर में आप यूक्रेनियंस की मदद कर रहे हैं,
यस यस यस,
एंड हमें आप भूल गए,
हमें भूल गए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी दिल वड्डा सिर्फ पाकिस्तान का जी, इतने बंदियां अपने कार रखिया, कदे किसी ने क्या कट देंगे जी इन्हों है जी, तो पाकिस्तान का तो कभी किसी ने शुक्रिया नहीं
दिया, आज भी है।
हाँ जी आज भी बैठे हैं वहाँ। अच्छा जी बहरहाल क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, 11 सोल्जर्स एंड 2 सिविलियंस जो हैं वो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर उनकी डेथ हुई, उसकी वजह यह थी कि उनकी एक ये जो सिविलियन बस चल रही थी इसके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक किया गया है, और ये रक्का और होमस के एरिया में थे, ये हाईवे के ऊपर जा रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो अटैक है इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि शायद आइसिस वालों ने जो है अटैक किया है। इसके अलावा एक और जो बस थी जबल अल बशरी के एरिया में, उस पर अटैक किया गया है, और इसमें भी काफी सारे लोग जो हैं वो हुए हैं सीरियसली इंजर्ड। इसके अंदर और दूसरे दो अटैक्स में डिफरेंस ये है कि वो सिविलियन बसेस थी, ये मिलिट्री की बस थी।
सही।
तो ये अटैक्स जो हैं जी अब बढ़ गए हैं, और काफी सारे ये नॉर्दर्न सीरिया के अंदर फिर से आइसिल के सर उठाने की जो है खबरें आने लगी हैं। फ्रांस के अंदर भी जनाब आज मैक्रों साहब जो हैं उनकी भी आज सीट जो है वो डामाडोल है, और यहां पर भी ये हुआ है कि हालांकि इनकी सबसे बड़ी पार्टी है फ्रांस में मैक्रों साहब की, लेकिन फिर भी इनके पास जो हैं तकरीबन 245 सीट्स हैं, लेकिन इनको रिक्वायर्ड सीट्स जो हैं वो 289 चाहिए इन 577 मेंबर चेंबर। तो ये इनके कोएलिशन के कुछ बंदे जैसे कि पाकिस्तान में तितर बितर हो गए ना, पहे है दे के डिफेक्ट कर गए, इधर भी कोई चेकर हुए क्योंकि वो डिफेक्ट कर गए हैं जी, इनको छोड़ गए हैं। हालांकि इनकी बहुत बड़ी जीत थी, बहुत कन्विंसिंग इनकी विन थी, क्योंकि लेफ्ट विंग के जो वेटरन जॉन ले मैशलॉन थे और राइट विंग के लीडर मरियन लपेन जो थी वो उनको इन्होंने हराया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि मरीन लपेन जो है वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि उसके पास भी 89 लेजिस्लेटर्स हैं, तो अब वो इनको जोर दे सकती है कि अगर तुमको मेरी सपोर्ट चाहिए तो फिर मेरी भी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि ये फार राइट की हैं तो इनके साथ कुछ ज्यादा इनके वो मिलते नहीं हैं, और वैसे भी उनके जो वो जो उनके जो बयानात आते हैं वो काफी एंटी मतलब मुस्लिम तो नहीं हमें कहना चाहिए, एंटी इमिग्रेंट टाइप की हैं कि कोई भी दूसरी कम्युनिटी
की जो लीड थी ना,
हाँ,
जो मेजॉरिटी थी
जी
वो खत्म हो गई,
वो खत्म हो गई है। हाँ जी हाँ जी वो खत्म हो गई है। तो अब ये भी जो है अब इनकी कोलिशन कितने दिन अब चलने वाली है वो अब देखेंगे कि कैसे चलेगी। और इसको आज कुछ लोगों ने कहा है कि ये सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक शॉक मिला है आज फ्रांस को, तो इसके अंदर इनकी अब एबिलिटी भी है कि जी आपने जब इलेक्शन ट्रेल पे थे तो बड़े बड़े आपने वादे किए थे कि मैं इलेक्शन कट्स करूंगा, मैं ये करूंगा, तो अब ये आप वादे कैसे पूरे करोगे, वेलफेयर रिफॉर्म्स कैसे लाओगे, रिटायरमेंट एज को कैसे बढ़ाओगे, ये कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर आप ये कर नहीं पाओगे। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, और वैसे तो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग ही कह रहे थे कि वो जो تھی یہ پیلسٹینین جرنلسٹ الجزیرا کی, امریکن پیلسٹینین شیری ابو اخلے, جس کو کہ مار دیا گیا تھا اور اسرائیل نے ڈائریکٹلی بول دیا تھا کہ جی اس کو جو ہے یہ خود پیلسٹینینز نے مارا ہے. اور بہت دنوں سے ڈفرینٹ واشنگٹن پوسٹ, ایسوسیٹڈ پریس, بیلنگ کیٹ, یہ جو انویسٹیگیٹو گروپ ہے, اور ایون سی این این, ان سب نے بلیم کیا تھا اسرائیلی فورسز کو. آج نیو یارک ٹائمز کی جو انویسٹیگیٹو اسٹوری آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بہت دنوں سے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, آج ہم نے کنکلوڈ کی اپنی, اور یہ سارا کا سارا بلیم انہوں نے بھی اسرائیل کے سولجرز پہ ڈالا ہے. اور ان کی جو تھیوریز تھیں جو بلیم کر رہے تھے پیلسٹینینز کو, وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں جس علاقے میں وہ کھڑی ہوئی تھی, وہاں پہ جہاں پہ وہ رپورٹنگ کر رہی تھی, اس کے دور دور تک بھی کوئی پیلسٹینین نہیں تھا, وہ سارا علاقہ اسرائیلی سولجرز جو ہیں ان سے گھرا ہوا تھا. اور یہ ملٹری جو یہ جو اسرائیل کی ملٹری کانوائز جو تھے وہ اس وقت ادھر سے پاس کر رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ ان میں سے اسرائیلی کسی سولجر جو ہے اس کی گولی آ کے اس کو لگی ہے بیچاری کو, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس میں کسی پیلسٹینین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو اب یہ اب اور بات آ گئی ہے جی سامنے. ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ ہے, اور یہ سب سے پہلے ویسے صبح جو ہے اے ایف پی نے یہ بریک کی تھی, اور اس کے بعد پھر باقی جگہوں پہ اوپر بھی آئی ہے. یہ سری لنکا کے اندر فار دا فرسٹ ٹائم دس ہیز ہیپنڈ ان دیئر لانگسٹ ہسٹری, کے لوگ جو سویلینز ہیں ان کے اوپر ملٹری نے گولی چلائی ہوئے. اور اس کا جو ریزن ہے وہ بڑا صاف ہے کہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے پیٹرول لینے کے لیے پیٹرول سٹیشنز کے اوپر, اور ان کو پیٹرول مل نہیں رہا تھا, اور یہ جو ہیں پرائسز ان کی, نہ ڈیزل ان کو مل رہا تھا, پرائسز بھی بہت اوپر چلی گئی ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کتنی کتنی دیر سے کیو میں کھڑے تھے, اس کے اندر ان کی وائلنس ہو گئی اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. لڑائی میں انہوں نے جو سولجرز کھڑے ہوئے تھے یا پولیس والے تھے ان کو مارا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سٹون اٹھا کے پہلے ہماری طرف 20 سے 30 لوگ جو ہیں انہوں نے ہم کو سٹون مارنے شروع کیے. جب انہوں نے سٹون مارنے شروع کیے تو انہوں نے ان کے پاس جو رائفلز تھیں 365 جو ہے اس کے راؤنڈز انہوں نے جو ہیں وہ چھوڑے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے 3 سولجرز وونڈ ہوئے ہیں, اور کچھ جو ہیں 4 سویلینز جو ہیں وہ بھی کافی زخمی ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا تو انڈیپینڈنٹ جو پریس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہاں پہ. تو اس لیے, اور آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ انرجی کا کرائسس بہت ہی ڈیپ ہو گیا, کیونکہ 10-10, 12-12 گھنٹے سے تو اب بات آگے ہی بڑھ گئی ہے. 17-17, 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, صرف 2-3-4 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہے. اور آج جو ہے منڈے کو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ بھی پہنچی ہے سری لنکا میں دیکھنے کے لیے کہ ان کو کس طرح کا بیل آؤٹ پیکج دیا جا سکتا ہے کہ ان کے یہ کرائسس جو ہیں وہ سامنے آئے. تو یہ 1948 جو ان کو انڈیپینڈنس ملی تھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار کبھی ایسے ہوا ہے کہ ملٹری نے سول پاپولیشن پہ گولی چلائی ہے, تو ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اچھا جناب, ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں طالبان کے سپوکس پرسن جو ہیں, انہوں نے آج کہا ہے جی کہ یہ ہم نے بہت سارے یو کے جو سٹیزنز جن کو کہ پکڑ لیا تھا, اور پچھلے کئی سالوں سے 6 مہینے سے یہ ہماری جیل میں تھے, تو ان کو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے. آفٹر ٹاکنگ ٹو دا یو کے گورنمنٹ, 2 سیریز آف میٹنگز ان کے بیچ میں ہوئی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے لاز, ٹریڈیشنز اور کلچر کو وائلیٹ کیا تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈالا گیا تھا جیل میں. بہرحال جی, یہ جو فارن سیکرٹری ہیں یو کے کی لز ٹراس, انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ انہوں نے جو ہیں چھوڑ دیے ہیں 5 ہمارے یو کے سٹیزنز. اس کے علاوہ جو فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن یہ جو فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر یو کے کی گورنمنٹ کا کوئی بھی قصور یا لینا دینا نہیں ہے. یہ 5 جو ہیں اپنی مرضی پہ گئے تھے, کیونکہ یو کے کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت کلیئر ایڈوائزری کی تھی کہ طالب افغانستان از ناٹ دا پلیس ٹو ٹریول. یہ اپنے مزے کے لیے ادھر ٹریول کرنے کے لیے گئے, انہوں نے ان کا کلچر وائلیٹ کیا, جس کی وجہ سے افغان گورنمنٹ نے ان کو پکڑا اور ان کو جیل میں ڈالا. بہرحال اینی ویز وی آر ہیپی کہ انہوں نے ہمارے جو ہیں بندے چھوڑ دیے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ جس وقت گورنمنٹ کو ایڈوائزری دیتی ہے تو اس کے اوپر پلیز آپ دھیان دیں, تو پھر آپ ان نیسسریلی گورنمنٹ کو پھر آپ
فائدے کے لیے دیتی ہے.
ہاں, آپ کے فائدے کے لیے دیتی ہے. اے ایف پی کی جناب ایک اور رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر بے تحاشا یہ جو مونسون کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے فلڈز آ گئے ہیں, اور اس کے اندر آل ٹوگیدر 41 سے اوپر لوگوں کی ڈیتھ, تقریباً 50 کے قریب اب تو جو نئی آ رہی تھی کہ اس میں. یہ دیکھیں جی حالت, یہ تو پہلے تو بنگلہ دیش کی ہم تصویر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے انڈیا کی. یہ انڈیا کی ہے, تو یہاں پہ جو ہیں ڈیتھس ہو گئی ہیں 41 کے قریب, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کانسٹنٹلی ہیوی ڈاؤن پور لاسٹ ویک سے جو شروع ہوا ہے وہ یہاں پہ ہے. انڈیا کے اندر تو انہوں نے ٹروپس بھی بلائے ہیں, اور بنگلہ دیش میں کے اندر بھی اب انہوں نے کال دی ہے ٹروپس کو کہ آ کے इनको बचाएं और जो है लोगों को हाउस होल्ड जो है वो बिल्कुल उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दूसरी चीजें सब कट ऑफ हो गई हैं, स्कूल्स जो हैं उनको अब टर्न कर दिया गया है रिलीफ शेल्टर्स के अंदर, और मिलिट्री जो है ये कोशिश कर रही है लोगों को जो है सेफ इलाकों में पहुंचाने के लिए। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय शिव सुंदर, और इसकी हेडलाइन है अग्निपथ इज अ मार्केटिंग ट्रिक वेयर जॉब डिस्ट्रक्शन इज बीइंग सोल्ड एज जॉब क्रिएशन। ये हेडलाइन है इसकी। अच्छा जी, इसकी हेडलाइन का मकसद क्या आपको पता ही, हमने आपको बताया था लास्ट वीक अग्निपथ के बारे में, जो कि ये मिलिट्री की रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बहुत डिटेल में। हर साल ये होता था इंडिया के अंदर के 40,000 सोल्जर्स जो थे उनको रिक्रूट किया जाता था लोगों को, और फिर उन सब लोगों को ट्रेनिंग के बाद जॉब्स दी जाती थी। अग्निपथ जो नया ये जो सिस्टम आया है इसमें वो कहता है, ये आर्टिकल कहता है जी, ये जो शिव सुंदर का है, कि गवर्नमेंट ने बातें तो बड़ी मीठी मीठी की, बड़ी अच्छी की, क्यों जी हम अब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के जमाने में सबसे ज्यादा, वो कहता है ये आर्टिकल कहता है कि बीजेपी के गवर्नमेंट फेल हो कर गई है बिल्कुल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खासतौर पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, तो अब वो ये मीठी मीठी गोलियां दे रहा है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो पहले हम 40,000 सोल्जर लेते थे और उसको बेनिफिट्स देते थे और उसको रिटेन करते थे, इस सब को हम खत्म करके वी अब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इस 40,000 में से सिर्फ 10,000 को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी 30,000 जो है उनको रिट्रेंच कर दिया जाएगा। तो ये तो जॉब को खत्म करने का तरीका नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को यानी कि खत्म करने का तरीका नहीं है। तो वो कह रहे हैं जी ये सिर्फ एक मीठी गोली है। अच्छा, इसके अंदर बड़ी सख्त उन्होंने शिव सुंदर साहब ने जबान इस्तेमाल की है। वो कहते हैं जी कि ये जो हमारा जो ये जो फिल्में भी बनती हैं और ये जो हमारा मिडिल क्लास का जो ये बड़ा रेटरिक है ना कि हम तो देश के लिए मरने को तैयार हैं, वो कहते हैं जी ये देश के लिए मरने को तैयार मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास का कोई इस तरह का कोई सेंटिमेंट ऐसा नहीं होता। उसने तो टेबल के ऊपर अपनी जो फैमिली है उसको रोटी पहुंचानी होती है, उसका सेंटीमेंट ये होना होता है। और आप ये जो अग्निपथ लेकर आए हैं ये आप लोगों को चूंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए कि फौजी वो लड़ता है जिसको के पता है कि मुझे पेंशन भी मेरे घर वालों को मिलेगी, मेरी सिक्योरिटी भी है, मुझे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, मुझे अच्छे से ट्रीट भी किया जाएगा और मुझे रैंक्स भी मिल सकते हैं मिलिट्री के अंदर रहते हुए। ये सब चीजें चूंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आप उनकी ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको तो नजर में रखा ही नहीं है। तो ये मीठी गोलियां देनी छोड़े बीजेपी की गवर्नमेंट, ये झूठ बोल रहे हैं ये, और उसी की वजह से जो है ये इतना ज्यादा अनरेस्ट जो है मुल्क के अंदर आया हुआ है। वो कहते हैं जी कि एक आर्मी ऑफिशियल जो है उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये किंडरगार्टन केजी की जो है एक ये फोर्स पैदा कर रहे हैं जिसका कि कोई नेशनल डिफेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होएगा, वो मरने को तैयार नहीं होएगा फौजी पर सरहद के ऊपर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कल उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। तो ये बहुत ही आज सख्त किस्म का इन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जी बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है डिजास्ट्रस इकोनॉमिक पॉलिसीज चला रही है और उसकी वजह से जो मुल्क है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। दिल्ली के अंदर जी आज बेतहाशा मैसिव जो है ट्रैफिक जैम्स लगे रहे और लोगों को कई कई घंटे लगे। ये देखें जी, जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएगा कि गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी रही है सारा दिन, लोगों को कई कई घंटे लगे अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए। उसकी वजह यह है कि तीन तरह के मोर्चे निकले हुए थे। एक तो यूथ जो थी उसने अग्निपथ के अगेंस्ट मोर्चा निकाला हुआ था, एक भारत बंद की कॉल दी गई थी इसीलिए अग्निपथ के लिए, और एक कांग्रेस ने निकाला हुआ था। ये जो राहुल गांधी जो उनके लीडर हैं उनको ईडी वाले जो हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले बार बार जो बुलाते जा रहे हैं। तो ये जो इलाके थे नोएडा दिल्ली फ्लाईवे मीरठ एक्सप्रेसवे आनंद विहार सराय काले खान प्रगति मैदान दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर और ये सारी जगहों पे काफी ज्यादा आज रश देखे गए। और इसके अलावा जो है तकरीबन 600 ट्रेन्स जो हैं वो भी कैंसिल हुई और जगह जगह पे वही अभी भी जलाओ घेराव जो है वो चलता जा रहा है। अगर आपने एनडीटीवी देखा है उसके ऊपर वीकेंड के ऊपर तो आपने देखा होगा पूरी पूरी ट्रेनें जलाई हैं लोगों ने और टायर जलाए और भी काफी प्रॉपर्टी जो है वहां पर डैमेज की है, क्योंकि कोई भी ये मीठी गोली जो दे रही है मोदी जी की गवर्नमेंट अग्निपथ के अंडर वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर तो वही मैंने कहा ना, हमारे माई बाप जो है वो अंकल सैम है। अब ये डील जो है आईएमएफ के साथ तो पाकिस्तान के साथ हो नहीं रही थी, तो अब पाकिस्तान ने अब पहलों को तो जलील करके निकाल दिया। ओ जी महंगाई तुमने बड़ी कर दी है, हम आके मुल्क के हालात ठीक करेंगे, तो अब ये कह रहे थे कि जी ये हम करेंगे आके, तो IMF ने कहा आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, जो आपके साथ जो पहली गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया गया था आप वैसे ही चलेंगे, लेकिन आपने उस सिस्टम को चूंकि डिरेल किया है, एज अ रिजल्ट हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एज अ रिजल्ट हम आपको नई शर्तें आप देंगे, जो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये इमरान खान ने जो है सारी डील जो है इनके साथ साइन की हुई है, नो नो नो, दे हैव कम अप, IMF हैज कम अप विद न्यू डील्स कि नहीं तुम नई गवर्नमेंट हो, तुम्हारे साथ नई डील अब हम करेंगे, उस डील के ऊपर हम नहीं चलेंगे जिससे कि हालात काफी खराब हो गए हैं। उसकी वजह से जी जाके इन्होंने जो है वो ये हमारे जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं आयशा गौस पाशा, इन्होंने जाके घुटने टेके हैं वहां पे जो इस्लामाबाद के अंदर US का जो है एम्बेसी है वहां पे अम्बेसडर से, ये अमेरिकन अम्बेसडर से मिले हैं और उनको कहा जी पायान साड़ी जान बचाओ, तो कहते सी इमरान ने हटाया सी तो साड़ी जान बचाओ, तो इनको आज अपेरेंटली जो मीडिया के कुछ सेक्शन में आई है कि वाशिंगटन ने इनको कहा है कि यस हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट US ट्रेजरी हाई अप्स के साथ भी होना चाहिए, सिर्फ मैं एज एन एम्बेसडर कुछ नहीं कर सकूंगा। तो उसके ऊपर जनाब अब ये वो कह रहे हैं कि आप जो है हमारी हेल्प करें, और IMF इनको वो आज जो ये रिपोर्ट आई है ये इतनी फनी है, फनी तो नहीं है, जाहिर है कि ये बेइज्जती है, उन्होंने कहा जी कि IMF को पता चल गया है कि पाकिस्तान इज सच अ डेस्परेट बोरोअर और ये इस वक्त जो हम इसको शर्त बोलेंगे ये वो मानेंगे, वो करने को ये तैयार हो जाएंगे, तब जाके उन्होंने जी ये अपने घुटने टेके हैं उधर अम्बेसडर साहब के सामने, उन्होंने कहा पायान साड़ी मदद करो। इसके ऊपर जनाब जब इन्होंने घुटने टेके हैं तो ये इनको असल में $6 बिलियन जो है वो चाहिए हैं, तो इन्होंने जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो है इन्होंने आज कहा जी 2-3 दिन की बात है, बस 2-3 दिन में हमारी डील IMF के साथ हो जाएगी और उसके बाद जो है हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने IMF ने इनको कहा है कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर डिलीवरी मेजर जो है नेक्स्ट ईयर में वो इसको तुमको जो है स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रिजर्व्स जब से तुम फॉरेन रिजर्व्स जब से तुम लोग आए वो बेतहाशा नीचे चले गए हैं, और तुमने कहा जी हम इनको इंक्रीज करेंगे 9.5 ट्रिलियन पे ताकि हमारी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर चले। IMF ने इनको कहा है कि हम तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमें नहीं लगता कि तुम 7 ट्रिलियन रुपीज का टारगेट भी मीट कर सकते हो, अगर तुम पहले वाले रवश पे चलते तो शायद हम ये बातें तुम्हारी सारी मानते और ये तुम अचीव कर सकते थे टारगेट्स, अब ना तो तुम्हारी ग्रोथ उस पे जा रही है जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान इज ग्रोइंग एट द यू नो लेवल ऑफ 5.9 to 6, तो अब वो कहते हैं जी ना तो हमें ग्रोथ नजर आ रही है और इसलिए नाउ वी विल रीनेगोशिएट डील विद यू। दोबारा जी उन्होंने आज बड़ी खुशी का इजहार किया है IMF के साथ,
फॉरेन रिजर्व जो हमारा इतना कम होता जा रहा है जी, कि जी, वी आर इन द ब्रिंक ऑफ
कोलैप्सिंग। या वही अच्छा जनाब, आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके पास नैब का अमेंडमेंट बिल 2020 भेजा गया था जो आज उन्होंने दूसरी दफा रिजेक्ट करके वापस भेज दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को, पहली दफा उनके पास June 4 को आया था तब भी उन्होंने भेज दिया था, वो एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं Clause 1B ऑफ Article 75 में ये लोगों को फ्री हैंड देगी करप्शन करने के लिए। प्रेसिडेंट अलवी का आज कहना था कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं ये इसमें अमेंडमेंट लाके वो ये है कि जो चाहे जितनी मर्जी ट्रिमेंडस वेल्थ जो है वो अमैस कर ले गलत तरीके से, और जो कि जिसके के बारे में पाकिस्तानियों के दिमाग में कोई भी गलत फहमी नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, तो भी आप एस्कॉर्ट फ्री फिर सकते हैं एंड यू आर फ्री टू प्लंडर पाकिस्तान। तो ये मैसेज जाएगा, इसलिए मैं इस बिल के ऊपर बिल्कुल साइन जो है वो नहीं कर सकता। लाहौर जिंदाबाद जी, लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली है, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैं बहुत बिजी हो गया हूं, मैं जो है अब प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं इसलिए मैं जो है अपीयरेंस नहीं दे सकता। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस जो इनके खिलाफ लगा हुआ है वहां पर, उसके लिए इनके जो वकील है उन्होंने कहा जी कि ये प्राइम मिनिस्टर लग गए हैं, ये बेताशा बिजी हो गए हैं, इनकी बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। इन्होंने भी कोर्ट को कहा जी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपने मुझे बुलाया हो तो मैं ना आया हूं, तो मैं आऊंगा लेकिन अब मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो सकूंगा, मेरा लॉयर आएगा और वो इसको फेस करेगा। और वो कहते हैं जी कि उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना बहाना बनाया ना उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिया कि मैं बेताशा बीमार हूं तो मैं नहीं आ सकता। तो भाई ना तुम बीमार होना ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर आपने अब बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं बीमार हूं, लोग कहेंगे हटाओ इसको, ये तो बीमार आदमी है जी, उठते तुम बीमार नहीं हो सकते पैन, क्या मजाक करते हो ये आप। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जनाब जरा कच्चे चटे थोड़े से खोलने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि ये वही झूठे गोशवारे हैं जो कि इन्होंने खुद से जो भरके जो है वो उनको भेजे हुए हैं। एनीवेज अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो सारी आई हैं चीजें, जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के जी हमजा शरीफ साहब, उनके पास 400 मिलियन टोटल रुपीज हैं, उनके पास 11 घर हैं, उनकी जो वैल्यू है वो 130 मिलियन है ईच हाउस की। इसके अलावा उनकी जो पहली बीवी है उसके एसेट्स 5 मिलियन के हैं, दूसरी बीवी के 30 मिलियन के हैं, अलीम खान साहब के पास जो है वो 700 मिलियन के हैं, उस्मान बुजदार साहब के पास एसेट्स 58 मिलियन के हैं, मुराद राज के पास 380, मियां महमूदुर रशीद 180 मिलियन, पंजाब नेशनल असेंबली स्पीकर पंजाब असेंबली स्पीकर परवेज इलाही के 200 मिलियन, उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो भी कुछ 60 मिलियन की हैं। इसके अलावा उनके पास एक फ्लोर मिल है 9.9 मिलियन की, उनकी बीवी की वर्थ 100 मिलियन रुपीज की है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सिप्तेन खान, वो 10 मिलियन है उनके पास, हालांकि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। और जो अवेश लगारी साहब हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उनके पास 440 मिलियन है अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने भेजे हैं। और स्विस बैंक में कितने पड़े हैं वो किसी को पाया नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं भी आपको ये खरबे नहीं दे सकती। बहरहाल जी उधर भी बड़े इन लोगों के पड़े हुए हैं,
रिच लोग हैं,
अब पैसे वाले लोग हैं, पाकिस्तानी थे अमीर ने तो पता ही है ना। अच्छा जनाब, आज सिंध हाई कोर्ट ने जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तजा वहाब साहब, उनको आज एक समन भेजे हैं और उनको कहा है जी कि आपके खिलाफ एक पिटीशन डाली गई है कि ये जो फ्रेयर हॉल का जो लैंड है इसके ऊपर आप अपना एक गेट बना रहे हैं और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप इस लैंड पे नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आप बना नहीं सकते हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि फौरन इसको डिमोलिश करें और उसके बाद आप आके जो है यहां पे हमें बात करें और आइंदा खबरदार आपने कोई नई कंस्ट्रक्शन बनाई।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो, घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी, ग्रोसरी का सारा सामान, साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी, मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर, न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर हो पे लोन, सोचो ना बस बिल्कुल भी, होने मिलाओ फोन
416-502-8000। स्ट्रेस चाहे लाखदा हो या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन, आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक ल्यूब 519-622-0660, quicktruckcube.com।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
गुजार साहब के खिलाफ एक और केस लगा दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि आप बहुत अरसा पहले जब आप नहीं बने थे ना चीफ मिनिस्टर पंजाब के, तब आपने डीजी खान के अंदर एक जमीन ली थी, अगेंस्ट द रूल्स आपने उसके अंदर जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस जो है उसने अप्रोव किया आपके खिलाफ और पता चला है कि आपने और आपके भाइयों ने 887 कनाल और 26 मरले की जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर स्पेशल फेवर्स लेके आपने अपने नाम किए हैं, तो ये अब आपको जो है वापस करने पड़ेंगे। तो पायन बस अब जो जो गवर्नमेंट में नहीं रहेगा वो उसके सारी जमीनें वापस वो करे। अच्छा जी, इंडिया के आर मधावन, आपको पता ही है कि बड़े फेमस हैं, एक्टर हैं, उन वो कहते हैं जी जब मैं अपनी फिल्म बना रहा था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, तो उसके अंदर शाहरुख खान ने मुझे कहा यार तुम मुझे कोई भी रोल दे दो इस फिल्म के अंदर तो मैं करूंगा। और वो कहते हैं जी इसके साथ सूर्या जो है एक और उधर का साउथ का बहुत बड़ा स्टार, उसने भी कहा था कि मैं भी इसके अंदर रॉकेटरी के अंदर काम करूंगा। ये बहुत जबरदस्त फिल्म थी और ये कहते हैं जी मेरी मुलाकात शाहरुख खान के साथ जब ये जीरो पे हम काम कर रहे थे तब मेरी हुई थी, और रॉकेटरी के अंदर फिर इसने सूर्या ने और शाहरुख खान दोनों ने कैमियो रोल्स किए थे। ये इसरो के एक साइंटिस्ट के ऊपर बनी है तो उसके लिए ये कहते हैं कि मैं एम रियली थैंकफुल टू शाहरुख खान एंड इवन सूर्या के, इसके लिए इन्होंने एक रुपया भी नहीं लिया था और फ्री जो है वो काम किया था। तो ऐसे है, बड़ी उन्होंने तारीफ आज की। एंड जनाब शिल्पा शेट्टी हमारी बेचारी इसके तो सितारे गर्दिश में ही आ गए हैं जब से ये कुंद्रा से राज कुंद्रा से शादी करके बैठी है। पहले वो मियां साहब के स्कैंडल, फिर उसको बेचारी को निकाल दिया वो जो वो जज करती थी गाने का शो उसमें से, फिर खैर ले लिया वापस, लेकिन अब जो इसकी फिल्म आई है निकम्मा, निकम्मा जी निकम्मी निकली बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी निकली क्योंकि चार पांच दिनों में टोटल 1.6 करोड़ इसने कमाए हैं। आप सोच सकते हैं
क्या चीज है,
कुछ भी नहीं है इनके लिए, इतने तो ये एक एक्टर को दे देते हैं। अच्छा जी तरण आदर्श जो है जो कि ट्रेड फिल्म ट्रेड एनालिस्ट है वो कहते हैं जी कि ये निकम्मा हैज मेट ट्रेजिक फेट। फ्राइडे को इसने 51 लाख किए, सैटरडे को 48 लाख, संडे को 52 लाख, तो हार्डली 1.56 के करीब जो है
हजार करोड़ की बात कर रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, और फिल्मों पे लगाते भी तो कितना है ना। हाँ। अच्छा भाई भाई ये तो फिर भी कोई इतने भी हाई फ्लाइंग बजट की नहीं थी तो चलो ठीक है, इसको नुकसान तो हुआ लेकिन फिर भी इतना पेन नहीं उसको आएगा। आप सोचे वो जो पृथ्वीराज चौहान जो बनाई है उन्होंने कोई 200-300 करोड़ रुपया उसकी मेकिंग पे बना लगा दिया है और उसने कोई 60 करोड़ की है हार्डली, आप सोचोगे
हो गया काम।
हाँ हो गया ना काम उसका और तो कुछ ज्यादा ही बैठ गया बेचारा। अच्छा ये दीपिका पादुकोण जो है वो जो अपनी एक नई फिल्म के ऊपर काम कर रही है के प्रोजेक्ट के ऊपर हैदराबाद के अंदर, तो वो अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई तो उसके लिए मीडिया ने इतना वो शोर मचा दिया और कहा पता नहीं क्या हो रहा है, शी इज फेसिंग हेल्थ इश्यूज और ये और वो, इतना इन्होंने शोर मचाया इंडिया के अंदर के जो फिल्म प्रोड्यूसर है अश्विनी दत्त उनको सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा वो सिर्फ रूटीन के चेकअप के लिए गई थी, कुछ भी उसके हेल्थ को नहीं हुआ है, वो शी इज फाइन। इनके साथ जो काम कर रहे हैं इसके अंदर प्रभास जो साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं और वो भी हैं और वो कह रहे हैं जी हमारी कोई ना शूटिंग रुक रही है ना कुछ है, ऐसे ही चल रही है और ये जो मीडिया की आदत है ये हमेशा दे ब्लो इश्यूज आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
ये तो हमारा काम ही है,
हमारा काम ही है, हमारा चढ़ा के पेश करना ठीक है। एंड जनाब श्रीलंका के मुल्क के हालात कैसे भी हो क्रिकेट के बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं। अच्छा जी अब इन्होंने सेकंड जो ओडीआई था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है जी, आप सोचे जरा। तो ये जो है अब चल रहे हैं 2-1 से, पहला उन्होंने जीता सेकंड इन्होंने जीता अब थर्ड भी ये लोग जो है वो जीत गए हैं 6 विकेट से, ये तीसरा जो है ओडीआई सरप्राइजिंगली। ये इसके अंदर जो पथुम निसांका है जी उसने बड़ी जबरदस्त गेम की, 147 बनाए इसने और ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने 292 का इनको दिया था टारगेट लेकिन इन्होंने जनाब अचीव कर लिया। तो अब 5 मैच सीरीज में 2-1 से ये जनाब चल रहे हैं। एंड जनाब पाकिस्तान यंगस्टर नूर जमान 18 इयर्स टोटल उसकी एज है एंड ही बीट जोसन चोआ ऑफ मलेशिया एंड ही हैज वन एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वाश चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड पताया के अंदर हो रहा था, इसके अंदर इन्होंने चोरा को 3-1 से जो है वो 52nd जो मिनट था उसके अंदर ये करके और अपना जो है अंडर 19 का टाइटल विन किया। और कहा जाता है कि ये जो नूर जमान है वन ऑफ द टॉप जो है ये स्क्वाश प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर और वैसे इनको बड़ा ये जो चुआ जो है ये इस बड़ा खतरनाक ये भी प्लेयर था, बड़ा इसने टफ फाइट दी बट ही बाउंस्ड बैक नूर जमान जो है। एंड एब्सोल्युटली द लास्ट न्यूज इज अबाउट अवर सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम, बड़े अरसे के बाद 12 साल के बाद फिर से फील्ड के ऊपर नजर आए और आते सारी इन्होंने जो है विकेट ली। ये हो रहा था एक चैरिटी मैच इन रिमेम्बरेंस ऑफ एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न वेल बींग ऑफ वुमेन सेलिब्रिटी चैरिटी मैच इन यूके और उसमें इन्होंने आते ही जो कि लास्ट टाइम इन्होंने 2015 में खेला था वो आते ही इन्होंने अपना जो इन स्विंगिंग यॉर्कर है वो मार के जो फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर है माइक एथरटन उनको आउट किया। तो जब आउट किया तो दुनिया आए क्रिकेट जो है वो झूम उठी, क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट जो है उसने ये सबसे पहले तो वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा वाओ व्हाट अ क्लासिक वसीम अकरम इन स्विंगिंग यॉर्कर टू गुड फॉर माइक एथरटन।
वापस बुला ले इनको।
हाँ जी हाँ जी
वापस बुला ले जी,
ये वाला चैरिटी मैच है anyway,
इनको वापस बुला ले जी।
हाँ वापस बुला ले चलो
की टीम के लिए वापस बुला ले।
हाँ हो जी हाँ
ये हमारी खबरें
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान तो कॉल करें मुझे मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का बच्चों की एजुकेशन का या आपकी अपनी रिटायरमेंट का मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत लोएस्ट रेट्स क्योंकि मैं डील करता हूं तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का 905-607-5000 मैं हूं फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज सी यू सून
अस्सलाम वालेकुम मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड मिसिसागा
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना वहना नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 416-792-8792
रिंगिंग बजिंग हिसिंग टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792 अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडीज और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन जीटीए तो इंतजार कैसा अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
میزمرائز آپٹیکل سن گلاسز آئی گلاسز اینڈ کانٹیکٹ لینسز
ڈاکٹر آن سائٹ گیٹ یور آئی سائٹ چیک میزمرائز آپٹیکل
مارکم اینڈ شیپرڈ 1789 مارکم روڈ 416-335-0786
اگر آپ کے گھر میں بیڈ بگز ہیں یا کچن میں کاکروچز ہیں یا بیسمنٹ میں چوہے دوڑتے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی نام یاد رکھیے بایو کیمپ پیسٹ کنٹرول ہم آپ کو بہترین کوالٹی کی سروس بہترین ریٹس پر فراہم کریں گے اس کے لیے ڈائل کیجئے 416-747-6600 یا مجھ سے یعنی عالیجہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے 647-848-4020 647-848-4020
Baba's Pizza and Wings, hot and fresh. Pizzas ki variety, ya apni pasand ka pizza. Chicken charga, crispy chicken, tandoori chicken, chicken wing, aur mazedar fries, potato wedges, poutine, onion ring, garlic bread, panzers, aur bahut kuch. Online order ke liye, visit kijiye babaspizza.ca ya call karein Malton location 905-673-7786 ya Brampton location 905-790-6786. Baba's Pizza and Wings.
السلام علیکم ایوری ون مائی نیم از ناصر شاہ آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں سے ہم مورگیجز کر رہے ہیں لونز کر رہے ہیں اور کمرشل مورگیجز کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی طرح کی مورگیج چاہیے تو گارنٹی آپ کو بیسٹ ریٹ آفر کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں اور کمرشل مورگیج کبھی بھی آپ کو چاہیے کسی طرح کی ہوٹل موٹل گیس اسٹیشن یا کوئی فرنچائز لینی یا کسی پلازے میں کوئی یونٹ بائی کرنا تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں اور اگر آپ کو بزنس لائن آف کریڈٹ چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں کال کریں
647-741-9000
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूं मैं तुझसे अता मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता सुरूर रखना, बला से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां को घेरे हुए हैं, परेशान पना मांगता हूँ, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का होशा जन का होशाना बुगुंचा दिलों के चमन का,
दामन हमारा मुरादों से भर दे, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, मैं सब के लिए ये दुआ
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.